ये महीना बहुत पावन माना जाता है और इस महीने में जो भक्ति की जाती है इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो इसमें ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, भगवान के गुणगान में तरह तरह के भजन गाने चाहिए। इसलिए यात्रा पुरुषोत्तम अधिक मास में ही हुई, बहुत अच्छा है। तो वैष्णव समाज में ऐसे अनेक भजन गाए जाते हैं, उनमें से एक है ये चौरा अग्रगण्य पुरुषाष्टकम। आप में से कितने भक्तों के पास वैष्णव गीत पुस्तिका है? ठीक। तो जब भी ऐसी यात्रा होती है अवश्य अपने अपने पुस्तक आप साथ में ले आइए, बहुत अच्छा रहेगा। आप सब ज्यादा थक तो नहीं गए ना? बाजल खोल गन घनाता है झांझर रो ताते बाजल खोल गन घनाता है झांझर रो चरण नो पुर बाजे। शरीर साजे गल रे राते दिवस शरीर साजे मन दुर्लभ मानव देह की करो पावन के मन दुर्लभ मानव देह पालकी करो पावन के जिले यशोदा सूता चरण तोड़ी पलाजे एदन भाजिले यशोदा सूता चरण तोड़ी पलाजे उदित तपन होइले हस्त दिन गेलो बोले होइबे व्यस्त से आशे मधुर नाम जीवेर कल जाना साधन काल जगते आशे मधुर नाम Krishna, Krishna, Krishna. कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल का गोस्वामी आगे बताते हैं
गीत का
साफ सुन लेता है कि मेरा भोजन पास में है, कोई महाप्रसाद बोल रहा है, तो वहां पास में चले जाता है। मेंढक यदि चुपचाप रहता तो सांप को पता नहीं चलता कि मेंढक कहां है, लेकिन जोर जोर से टर्राने के कारण सांप को पता चल जाता है। शीघ्र ही सांप वहां चले जाकर उस मेंढक को खा लेता है। उसी प्रकार से जो लोग भगवान के गीत न गाकर संसार के गीत गाते रहते हैं, उनके जीव ऐसे मेंढक के समान हैं, जो काल रूपी सांप को केवल आकर्षित करते हैं और वो केवल मृत्यु के करीब जाते रहते हैं। बस उनके जीवन में और कोई लाभ नहीं है और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल मृत्यु को आकर्षित करना यही उनके जीवन का प्रयोजन है। तो इस श्लोक में नैमिषारण्य के ऋषि बता रहे हैं कि जो अपने कानों से भगवान के गुणगान को सुनते नहीं है, उनके कान कान नहीं है, केवल सांप के अंदर जो छेद होते हैं वो है, और जो लोग अपने मुख से भगवान का गुणगान करते नहीं है, उनका जो जीव है वो मेंढक के जीव के समान है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो भगवान का गुणगान सुनते नहीं है और करते नहीं है, वो सांप और मेंढक के समान है। पहले भी हम अनेक अन्य पशुओं के बारे में तुलना सुन चुके हैं, तो हम देखते हैं कि ऋषिगण जो होते हैं तरह तरह के रंगीन दृष्टांतों के द्वारा हम सबको सिखलाना चाहते हैं कि हमें कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। यदि ये बताया जाता है कि हमें हंस की तरह होना चाहिए, साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कौवे की तरह नहीं होना चाहिए, तो कैसे होना है और कैसे नहीं होना है दोनों का ज्ञान हमें शास्त्र में मिलता है। मनुष्य जीवन केवल इसलिए है, यदि इस बात को कोई समझ ले तो अपना समय व्यर्थ क्यों गवाएगा, क्योंकि लोग इस बात को जानते नहीं हैं, ये जानकर भी इसमें श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो संसार की कथाएं करते रहते हैं और उनमें रुचि लेते हैं। भगवद गीता में भगवान यही कहते हैं ना कि जो मेरी कथाओं में रुचि लेता है वो मेरा भक्त है। वास्तव में मत चित्ता मत कत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो व्यक्ति ऐसे कथाओं में भगवत कथाओं में रमण करता है वो सच्चा भक्त है, न कि जैसे ही भगवत कथा समाप्त हो जाए कि संसार की कथा बोलने के लिए बस हम आतुर हैं, तैयार हैं कि कब कथा ये कथा हो जाएगी और कब संसार की कथा शुरू हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों को बार बार सुनना, भक्तों के संग में इन कथाओं को बार बार सुनना बहुत आवश्यक है, इससे स्वाद बढ़ते रहता है। शुरुआत में भले हमें ठीक नहीं लगता है, इतना आनंद नहीं आता है भगवान की कथाओं में, परंतु जैसे जैसे हम सुनते रहते हैं वैसे वैसे स्वाद बढ़ते रहता है। सताम प्रसंगान मम वीर सब संविदो भवन तीर्थ कर्ण रसायना कथा तब जोशनाद आप आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है कि सताम प्रसंगान, यदि हम भगवान के भक्तों के संग में आके भगवान के लीलाओं का उपदेशों का आदि श्रवण करेंगे, स्वयं कपिल देव बता रहे हैं अपनी माता देवहूति को, तो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा, ये कथाएं रस में लगने लगेंगी, हमारे हृदय को साध्य को प्राप्त करने के लिए है, और एक बार साध्य की प्राप्ति हो जाए तो फिर इस साधन की आवश्यकता नहीं है। परंतु भक्ति ऐसा नहीं है। मायावादी लोग कभी भक्ति के अंगों का सहारा लेते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, परंतु उनका विचार यह होता है कि जब हम निराकार में लीन हो जाएंगे तो उस समय हमें कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। परंतु भक्त कभी ऐसा नहीं सोचते। भक्तों के लिए शुरुआत से लेकर जब से वो अपना भक्ति जीवन आरंभ करते हैं तब से कभी भी अंत नहीं होता है भगवान की कथाओं को सुनने का। वो जब भगवान के धाम में चले जाते हैं तो ये कार्य और भी तीव्र और भी शुद्ध और भी परिपूर्ण अवस्था में किए जाते हैं। इसलिए हमें अभी जो हमें आगे चल के करना है उसकी तैयारी अभी करनी है। जैसे डॉक्टरी पढ़ने वाला एक विद्यार्थी होता है, उसको पता है कि डॉक्टरी की परीक्षा पास करने के बाद मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बन के सारा जीवन इसी क्षेत्र में काम करना है, तो क्यों ना अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्यों ना अच्छी तरह से मेरे कॉलेज का कार्य कर लें। जब आगे चल के यही करना है जीवन भर, उसी प्रकार भक्त को सोचना चाहिए कि जब हम भगवान के धाम में चले जाएंगे तो अनंत काल तक हमें यही करना है, कथा सुनना है, भगवान की सेवा करना है, नाम उच्चारण करना है। तो जब अनंत काल तक यही करना है तो क्यों ना अच्छी तरह से करें अभी, क्यों ना पूरा मन लगा के दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इसी कार्य को करें। जब अपना सब कुछ बाद में यही होना है, इसके सिवाय कुछ नहीं है, तो क्यों ना इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। क्यों अन्य चीजों में हम आकर्षित हो जाते हैं? जिस हद तक अन्य चीजों में आकर्षित हो जाएंगे उतने कम नंबर परीक्षा में आएंगे। उसी प्रकार भगवान की भक्ति को छोड़कर जितना हम अन्य विषयों में आकर्षित होते हैं उतनी हमारी प्रगति कम हो जाएगी। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो अपने लक्ष्य के बारे में दृढ़ विश्वास रखे कि यही मेरा लक्ष्य है जीवन का, इसी को मुझे प्राप्त करना है और इसी जीवन में प्राप्त करना है। यदि हम ढीले रह जाएंगे, चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी चल रही है, थोड़ा बहुत भक्ति भी कर रहे हैं, ज्यादा पाप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कुछ हम कर लेंगे, जब भी कर लेते हैं, कभी कभी 16 माला भी कर लेते हैं, कभी कभी लगातार एक महीना 16 माला रोज कर लेते हैं, भक्तों के संग में भी आते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सुनते भी हैं, कभी कभी पढ़ते भी हैं, हाँ लेकिन कभी कभी टेलीविजन भी देख लेते हैं, कभी कभी इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, कभी कभी माया में पड़ भी जाते हैं। तो गंभीरता होनी चाहिए, वो एक निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। जैसे अदालत में कहते हैं ना, साक्षी को बोलना पड़ता है, हम सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में ऐसे ही कि ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसके सिवाय कुछ उद्देश्य नहीं है, कोई और उद्देश्य नहीं है, यही एक उद्देश्य है बस। घमंड से थोड़ा ऊंचा रखा गया है। रेशम की पगड़ी और बहुत कुछ चीजें हैं, तो रूप ठीक है, बहुत विशेष बात है। और घमंड के कारण जो सर ऊंचा है और भगवान के सामने वो झुकता नहीं है, वो कैसा है? भार है परम, वो एक बहुत भारी वजन के समान है उस व्यक्ति के सर के ऊपर। वो पगड़ी नहीं है, रेशम की पगड़ी नहीं है वो, क्योंकि वही जो भारी पगड़ी है वो भार इसलिए है कि ये इसको और निम्न योनियों में खींच के ले जाएगा, उसका पतन कराएगा। नीच योनि में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान के सामने अपना सर नहीं झुका रहा है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति जल में डूब रहा है, नदी में या सरोवर में या समुद्र में, और उसके सर के ऊपर एक भारी सोने का मुकुट है, तो सोने के मुकुट का फायदा डूबते हुए आदमी के लिए क्या है? फायदा नहीं है, नुकसान ही है। नुकसान यह है कि वो उस वजन के कारण वो और जल्दी डूब जाएगा, जो बचने की संभावना है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका वजन इतना ज्यादा है कि उसको पानी के नीचे खींच लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से वो सर जिसके ऊपर रेशम की पगड़ी बांधी गई है और जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को बहुत सम्मानित समझता है, बहुत ही ऊंचा व्यक्ति समझता है, और इसलिए भगवान के सामने झुकता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी? नीच योनियों में जन्म। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति और दो प्रकार की चीजें झुकते हैं, एक है फलवंत वृक्ष और दूसरे है गुणवंत जन। जो फलों से सुशोभित वृक्ष है, फलों से भारी है, वो शाखाएं झुक जाती है, क्योंकि उनमें फल है, बहुत महत्वपूर्ण या स्वादिष्ट मूल्यवान वस्तुएं हैं। वृक्ष का मूल्य फलों से जाना जाता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, जो गुणवान व्यक्ति है, वो भी अन्यों के सामने और विशेष करके भगवान और उनके भक्तों के सामने झुक जाता है नम्रता से। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होते हैं। जो व्यक्ति किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं अहंकार या घमंड के कारण, उनको तो झुकना ही पड़ेगा जब मृत्यु का बुलावा आएगा। कोई व्यक्ति झुके बिना रह नहीं सकता। हिरण्यकश्यप को भी झुकना पड़ा, इतना शक्तिशाली व्यक्ति कि नाम उच्चारण मात्र से देवतागण कांपते थे। हिरण्यकश्यप के कारण सारे ब्रह्मांड में बेरोजगारी फैल गई थी, देवताओं को कोई काम ही नहीं था, देवताओं को अपने अपने पदों से मुक्त करा दिया था हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप ही सारे देवताओं का कार्य अकेला संभाल रहा था, वायुदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, जो अपने अपने विभाग संभालते हैं ब्रह्मांड के व्यवस्थापन के लिए, उन सबों के कार्यों को हिरण्यकश्यप ने हड़प कर लिया। जैसे समझिए, प्रधानमंत्री ने सारे मंत्रियों को हटाकर सारे विभाग खुद संभाल लिए, और ये तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, प्रधानमंत्री को भी हटा दिया और खुद वहां गद्दी में बैठ गए। तो ऐसे हिरण्यकश्यप, जिनका कोई भी सामना नहीं कर सकता था, ऐसे व्यक्ति को झुकना पड़ा किसके सामने? 5 साल के बच्चे के सामने। झुकना तो पड़ेगा ही हमें, हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमसे ज्यादा कोई ना कोई शक्तिशाली रहेगा। हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, इस दुनिया में हमसे ज्यादा कोई ना कोई बुद्धिमान रहेगा। हम कितने भी धनवान क्यों ना हो, हमसे ज्यादा धनवान कोई ना कोई रहेगा। हम कितने भी योग्य क्यों ना हो, हमसे योग्य और कोई व्यक्ति रहेगा। फोन में भी नहीं बात करना है, फोन सब अपना साइलेंट पर रख दीजिए, साइलेंट। तो हमसे हमेशा कोई ना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति रहेंगे इस दुनिया में, चाहे वो हमारे 5 साल के बच्चे क्यों ना हो। एक बार हम पहले भी बता रहे थे कि भगवान ने बच्चों को क्यों बनाया है, आपको पता है? इस भौतिक सृष्टि में भगवान ने बच्चों को क्यों बनाया है? माता पिता के अहंकार को चूर करने के लिए। आप ऐसे जो माता पिता हैं, आप जानते हैं, भले सारी दुनिया आपकी बात माने लेकिन बच्चे नहीं मानेंगे, भले वो छोटे बच्चे क्यों ना हो। ना कह दिया तो कह दिया, बस क्या करोगे आप, आखिर अपने बच्चे हैं, क्या कर सकते हो। और हिरण्यकश्यप जैसे भी कोई निकले जो अपने बच्चे की हत्या करना चाहे, फिर भी नहीं कर पाए, बल्कि हिरण्यकश्यप की ही हत्या हो गई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में लोग घमंड के कारण किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, परंतु वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको झुकना तो पड़ेगा ही, और वो झुक ही रहे हैं माया के सामने, तो झुक ही रहे हैं माया के हाथों में, वो तो कठपुतली हो गए हैं, माया उनको नचा रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये अद्भुत बात है, माया इतनी बुद्धिमान है कि वो हर एक बुद्धिजीव को नचा रही है, और हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं दुनिया को नचा रहा हूं। लेकिन भगवान के भक्त कितने शक्तिशाली होते हैं देखिए। वृंदावन में जब गोपियां ताली मारती थी और कृष्ण को कहती थी, गीत गा के कृष्ण को कहती थी नाचो, तो बालक कृष्ण नाचना शुरू कर देते थे। और ये माया देवी जो है वो तो श्री कृष्ण की अध्यक्षता में चल रही है, माया देवी श्री कृष्ण के हाथ में कठपुतली है, जैसा कृष्ण कहते हैं वैसे माया देवी को नृत्य करना पड़ता है, जैसे माया देवी नृत्य कराती है बद्ध जीवों को नृत्य करना पड़ता है। और यहां भौतिक सृष्टि में जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो माया देवी के अधिष्ठाता देव, माया देवी के नियंता श्री कृष्ण को नचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर झुकाना सीखा है, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, और इसलिए भगवान इतने आभारी हो जाते हैं, इतने ऋणी हो जाते हैं ऐसे भाव के कारण कि वही अपने आप को भक्त के हवाले कर देते हैं, भक्त के हाथ में एक कठपुतली या खिलौना बन जाते हैं। तो जो व्यक्ति सब कुछ को नियंत्रण करना चाहते हैं, वो नहीं जानते हैं कि सब कुछ नियंत्रण करने का तरीका क्या है। जो व्यक्ति झुक के बिना नियंत्रण करना चाहता है, उसको बार बार झुकना पड़ेगा, अंत में मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ेगा, बुढ़ापे के सामने झुकना पड़ेगा, बीमारी के सामने झुकना पड़ेगा, तरह तरह के कष्टों के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है, प्रणाम करना सीख जाता है, वो भौतिक सृष्टि के भी नियंता भगवान को भी भस्म कर सकता है। इसलिए ऐसे जो भाव है, भक्ति का भाव, वो श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। कृष्ण भक्ति का ये एक लक्षण है, 6 लक्षणों में से अंतिम लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षिणी। जब युधिष्ठिर महाराज नारद जी के साथ बात कर रहे होते हैं श्रीमद् भागवत में, वो प्रहलाद का गुणगान करते हैं, क्योंकि भक्त का स्वभाव होता है कि वो अन्य भक्तों की प्रशंसा करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे कि प्रहलाद महाराज कितने भाग्यशाली थे कि स्वयं भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उनका उद्धार किया, उनकी रक्षा की। तो नारद मुनि ने कहा साथ रहे, आपके साथ उन्होंने खाया पिया, वो आपके साथ उठे बैठे, और इतना ही नहीं वो आपके सेवक बने, अर्जुन की स्पीयर का रथ चलाया, आपके आपके ओर से शांति दूत बनकर वो कौरवों के पास गए। और वही श्री कृष्ण जिनका एक बार दर्शन करने के लिए मात्र योगी अनेक जन्मों तक कड़ी तपस्या करते हैं, वही श्री कृष्ण आपके साथ एक साधारण व्यक्ति की तरह है, एक भाई की तरह, मित्र की तरह, दास की तरह रह रहे हैं। तो देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं। तो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इस संवाद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये साबित करने के लिए कि भक्ति ही एकमात्र चीज है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है और भगवान को पूरी तरह से वश में ला सकती है। अन्य कोई चीज नहीं है जो भगवान को वश में कर सकती है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो मायावादी लोग हैं वो भगवान बनना चाहते हैं, उनकी गलत धारणा ये होती है दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत, कि संन्यास दंड ग्रहण करने से नर या आदमी नारायण या भगवान बन जाता है। परंतु वो नहीं समझते कि इस प्रकार की धारणा रखने से दंड तो क्या उनको दंड मिलने वाला है। तो ऐसे मायावादी लोग सोचते हैं कि हम अपने ज्ञान योग के पथ को स्वीकार करके भगवान बन जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग भगवान बनने नहीं चाहते, हम लोग भगवान से परे बन जाएंगे। क्योंकि जब भक्त बन जाते हैं तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र विजय, दुर्वासा मुनि को भगवान नारायण कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं हे मुनिवर, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मत अन्य तेरा जानती तेभ्योपनापनापी, मैं भक्तों के सिवाय कुछ नहीं जानता, वो मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं पूरी तरह से मेरे भक्तों के अधीन हूं, मुझमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो भक्त के हवाले अपने आप भगवान कर देते हैं, अपने आप को पूरी तरह से भक्त के वश में आ जाते हैं। हालांकि भक्त के विचार कभी ऐसे नहीं होते कि भक्ति मैं इसलिए कर रहा हूं कि भगवान से ज्यादा मैं शक्तिशाली बन जाऊं, ये कभी विचार नहीं होता। भगवान से महान बनने की बात तो दूर क्या दूर है, भक्त तो भगवान के दासों के दासों के दास बनना चाहते हैं और कुछ नहीं बनना चाहते, सीधे भगवान का दास भी नहीं बनना चाहते। परंतु भगवान ऐसे भाव से इतने ऋणी हो जाते हैं कि उनको ही अपना स्वामी बना लेते हैं। तो जो व्यक्ति न केवल भगवान के सामने झुकता है परंतु भगवान के भक्तों के सामने के लिए झुकने के लिए भी तैयार होता है, आतुर होता है, ऐसे व्यक्ति के चरण धूलि भगवान अपने सर पे लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण नंद महाराज के पादुकाओं को सर पे रख के उनके पास लेके गए जब उन्होंने चाहा तो। इसलिए यहां ऋषिगण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भले धनी हो, योग्य हो, प्रतिष्ठित हो, जो भी हो, यदि वो भगवान और उनके भक्तों के सामने सर झुकाना सीखता नहीं है तो केवल दंडित हो जाएगा प्रकृति के कड़े नियमों के द्वारा। फिर आगे वो बताते हैं, बढ़ाइते ते नैने नराणाम लिंगान विष्णु नर न निरीक्षतो ये पादो ऋणांतो द्रुमचन्म भाजो क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेयो। बढ़ाइते, बढ़ा मतलब मोर पंख। अब विहार में बैठे हैं नवील तीर्थ। नवील मतलब मोर, कन्नड़ में नवील मतलब अभी भी हमने सीखा, नवील मतलब मोर। तो मोर के तीर्थ में बैठे हैं, मोर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं फिर भी होंगे। तो यहां भी मोर के पंखों की बात हो रही है। बढ़ाई देते नयने नराराम, तो ऐसे मनुष्यों की आंख बढ़ा या मोर पंख के ऊपर जो आंख के समान चिन्ह होते हैं उनके तरह है, जो कि लिंगान विष्णु न निरीक्षतो ये, जो भगवान के अर्चा विग्रह है, भगवान के चित्र, भगवान की तस्वीरों को अपने आंखों से नहीं देखता है। जब हमारे आंखों का प्रयोग भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं होता है तो उन आंखों का क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। वो केवल ऐसे है कि मानो मोर पंख के अंदर आंखों के समान जो चिन्ह जैसे लगते हैं, दिखते हैं आंख के समान, परंतु सचमुच आंख नहीं है। तो ऐसे लोगों की आंख उन चिन्हों के बराबर है, उन आंखों का कोई मूल्य नहीं है। परंतु दूसरी ओर ऐसे कोई संत हुए हैं जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर, अंधे हो गए बाद में, परंतु हृदय में भगवान का दर्शन सतत करते रहे। तो आंतरिक जो दृष्टि है भगवान की, वो भगवान अवश्य देंगे, चाहे हमारी बाह्य दृष्टि रही या न रहे। परंतु बाह्य दृष्टि होने के बाद भी इन आंखों का प्रयोग हम भगवान का दर्शन के लिए न करके केवल संसार के तथा कथित सौंदर्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे आंखें व्यर्थ हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ये आंखें बढ़ा मोर पंख के अंदर जो चिन्ह है उनके बराबर है। साथ साथ में पादो ऋणाम तो उत्तम जन्म भाजो, और उन लोगों के पैर द्रुम जन्म भाजो, द्रुम मतलब पेड़, उन लोगों के पैर पेड़ के समान है जो कि क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो, जो कि भगवान के धाम में, भगवान के तीर्थ स्थानों में कभी नहीं जाते हैं, जो भगवान के मंदिर में कभी नहीं जाते हैं, अन्य जगह में अपने पैर का उपयोग करते हैं जाने के लिए, सिनेमा घर में, अपने व्यवसाय के लिए, बाजार में, अन्यों के घरों में, अनेक जगह जाते हैं अपने पैरों से, परंतु भगवान के मंदिर में नहीं जाते, भगवान के तीर्थ स्थानों में, पवित्र धामों में नहीं जाते हैं, कभी परिक्रमा नहीं करते हैं। तो ऐसे पैर होने के बाद भी क्या फायदा? ये पैर तो क्या, ये तो पेड़ है, जैसे पेड़ की जो है पैर की तरह दिखता है, खड़ा है ना, ये भी एक पैर के ऊपर खड़ा है, ये वृक्ष, ये भी एक पैर, ये दो है, दो में एक कर दिए, खड़े हैं ऐसे अनेक समय से, जैसे ऋषि होते हैं कोई तपस्या करते हैं, एक पैर के ऊपर खड़े हो जाते हैं हाथ ऊपर करके, जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी ना, एक पैर के ऊपर खड़े हो गए त्रिकोण आसन में। जब आप योगासन सीख रहे थे आपको त्रिकोण आसन सिखाया गया ना, त्रिकोण आसन दिखाइए, खड़े होकर दिखाइए, किसको याद है त्रिकोण आसन दिखाइए, हाँ फिर से पूरा तक खड़े हो जाए अच्छी तरह से, और फिर हाथ हाथ, हाँ त्रिकोण आसन या पर्वत आसन, पर्वत आसन भी कहते हैं। तो वृक्ष के बराबर ही होता है ये, देखिए वृक्ष भी ऐसे शाखा ऊपर है, एक पैर पे खड़े हो गए हैं। तो कहने के लिए तो पैर है, लेकिन भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो क्या उपयोग ऐसे पैरों का? ये तो पेड़ ही है, तो भले पेड़ का जन्म मिला होता वो अच्छा रह जाता, कम से कम किसी का भला तो होता, पेड़ के कारण सबका भला होता है। देखिए हम इन पेड़ों का कितना फायदा तो कर सकते थे, वैसे इन्होंने क्या लाभ क्या पुण्य किए होंगे। आप सबको आश्रय देने का उनको सेवा का मौका मिला है। सेवा कर रहे हैं ना वैष्णव, सेवा कर रहे हैं ना ये पेड़, इनको कुछ तो लाभ मिलना है ना आगे चल के। ये भी वैष्णव सेवा कर रहे हैं, देखिए प्रसन्न है कि बेलगाम से इतने भक्त आए हैं, हमारे छाया के नीचे बैठे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पैरों का प्रयोग भगवान के लिए नहीं करता है, तीर्थ स्थानों में नहीं जाता है, मंदिर में नहीं जाता है, तो कोई उपयोग नहीं उसका, कोई लाभ नहीं। देखिए ऐसे कितने बातें बताई गई हैं जो कि बहुत कठोर लगती हैं, परंतु यह सत्य है। क्योंकि हमारे शरीर का उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे इंद्रियों का उद्देश्य यही है। हमारे प्रत्येक इंद्रिय को कृष्ण की सेवा में लगाना है, क्योंकि इंद्रिया है ऋषिक और कृष्ण है ऋषिकेश, ऋषिकों की ईश स्वामी, यही एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है। अन्य चीजों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, जैसे कल चर्चा कर रहे थे, दुनिया के चमक धमक से नहीं प्रभावित होना चाहिए। इन आंखों का प्रयोग दुनिया के चमक धमक के लिए नहीं रखना चाहिए। यहां तक कि जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म के चमक से आकर्षित होते हैं, उससे भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। ईशु परिषद में भक्त ने प्रार्थना की है, हिरणमयेण पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम यत्तम पोषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये, कि हे प्रभु आपके मुखारविंद का हम दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आपके मुखारविंद के सामने जो निराकार ब्रह्म का तेज है वो हमारी आंखों को अंधा कर रहा है, इसलिए उस उजाले को, उस प्रकाश को आप हटा दीजिए ताकि हम आपके सुंदर मुखारविंद को देख सकें। हम अंधे हो जाते हैं दो अवस्था में, हम देख नहीं पाते हैं दो अवस्थाओं में। कौन सी अवस्था में? एक जब अंधेरा होता है और बहुत ज्यादा प्रकाश जब होता है, तब तो जो कर्म के मार्ग में है, जो भोग के मार्ग में है, वो भी अज्ञान के अंधकार में है, इसलिए वो देख नहीं सकते, वो अंधे हैं, भगवान क्या है समझ नहीं पाते हैं। और जो लोग ज्ञान के पथ में है, ज्ञान योग के पथ में है, वो निराकार ब्रह्म के चमक से तेज से आकर्षित होते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा प्रकाश होने के कारण वो भी अज्ञान में है, उनका अज्ञान कुछ अलग है। कम से कम वो इतना तो जानते हैं कि परम सत्य है, परंतु परम सत्य अंततः एक व्यक्ति है और निराकार उनके देवी शरीर का तेज है, इस बात को ये नहीं जानते हैं। और जो भोग के पथ में है वो कुछ नहीं जानते, इस संसार के अलावा कुछ नहीं जानते, यही सब कुछ है गृह व्रतानाम। तो दो प्रकार के अज्ञान ऐसे हैं, दोनों अलग अलग के लिए उपवास रखना, गुरुवार और किसी के लिए कुछ व्रत करना, ऐसा होता है ना? तो अलग अलग मंदिर में आप देखेंगे, सोमवार को इस मंदिर में भीड़ रहेगी, मंगलवार को उस मंदिर में भीड़ रहेगी, परंतु कृष्ण भक्ति के लिए शनिवार हो, सोमवार हो, कोई भी हो, हर बार कृष्णवार है, सातों दिन कृष्णवार। तो हमें कृष्णवार, हर दिन को कृष्णवार बनाना है और अपने जीवन को ही कृष्णमय बनाना है, ये हमारे जीवन की सफलता है। तभी पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन होने के कारण अब ये एक भजन गा लेते हैं, चौराप्रगण्य पुरुषाष्टकम, कृष्ण का गुणगान है। जब संसार में कोई चोरी करता है तो उसकी निंदा होती है, वो दंडित हो जाता है, लेकिन जब कृष्ण चोरी करते हैं तो उनकी तरह कोई चोरी नहीं कर सकता, सबसे बड़े चोर हो जाते हैं और उनका गुणगान होता है, ये कितने बड़े चोर हैं। तो ये भजन हम गा लेते हैं, चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम्। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ये शुरुआत है। ये इस किताब में 102 वाले पन्ने में है। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां जगकुल चौरं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां जगकुल चौरं। अनेक जन्मार्ज तपाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नमाम्बुदश्यामलकान्ति चौरं। पदाश्रितानां च समस्त चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनि कृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। येनाप्योभीषण चोर एत्रे दृष्टा श्रुतो वा न जगत्रयेति। Thank you. यदि नामापि हरत्य शेषम् गिरि प्रसारान्नपि पापराशीन्। आश्चर्यरूपो ननु चोरहेत्रे दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश हत्वा मम सर्वमेव। पलायते कुत्र कृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धम् विनत्सि धीमं भवपाशबन्धम्। छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। मन्मानसेतामसराशिघोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः। लभस्वे चोर हरे चिराय स्वचोर्य दोषोचितमेव दण्डम्। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचोरहृदयान्न हि मोचयामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। Yeah. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Thank you.